ओम शांति। अभी आप सबने बहुत सुंदर योग किया। योग अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ का? हाथ खड़ा करके बताएं, योग में कुछ अच्छा अनुभव हो रहा है? तो यहाँ से हमें यही योग सीख करके जाना है। योग के साथ साथ जीवन को चलाने के लिए ज्ञान की भी जरूरत पड़ती है। ज्ञान भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। पिछले दो दिनों से आप सब बहुत अच्छी अच्छी बातें यहां सुन रहे हैं। हमारे बीच अनुभवी वक्ता आ रहे हैं और अपने जीवन के अनुभव से बहुत कुछ हमें बता करके जा रहे हैं। उनकी बातों को हमें आत्मसात करते जाना है और उन्हें आत्मसात करने में ये जो योग है, राजयोग, ये हमारी बहुत मदद करता है। अच्छाइयों को धारण करने के लिए भी बहुत बल की जरूरत होती है, वो बल हमें योग देता है। तो ये दो चीजें हमें यहाँ से साथ लेकर के जाना है। अब तक बहुत सारी चर्चाएं आप सबने सुनी, अब हम एक दूसरे पैनल डिस्कशन के लिए तैयार हैं। इस पैनल डिस्कशन में हमारे सामने तीन हमारे प्रबुद्ध वक्ता होंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे ये तीनों मेहमान हैं, उन तीनों मेहमानों को हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। कृपया इस सत्र के जो भी हमारे मेहमान हैं, कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय ब्रिजेश चंद्रा जी, कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय डॉक्टर प्रताप विद्या जी, आपसे भी अनुरोध करते हैं कि कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। प्रदीप मल्होत्रा जी और दुर्गेश देवी, आप भी आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच ये तीन ऐसे वक्ता हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो पैनल डिस्कशन है, इसका बहुत सुंदर थीम है, इम्पैक्ट ऑफ राजयोगा ऑन मूड स्विंग्स एंड मेंटल हेल्थ ऑफ यूथ। बात यूथ की नहीं है, सबकी ही मेंटल हेल्थ इस समय खराब है, पर यूथ को टारगेट करते हुए ये विषय चुना गया है हम सबके लिए। और ये जो तीनों वक्ता हमारे बीच बैठे हैं, इन तीनों के पास यूथ का एक अच्छा अनुभव है। उन्होंने यूथ को बहुत नजदीक से देखा है, उनकी मानसिकता को पढ़ा है, उनकी परेशानियों को जाना और समझा है। और अब जो कुछ भी वो बताएंगे, वो अपने जीवन के अनुभव से बताएंगे। ये जो विषय है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मानसिक रोग हमें चैन से रहने नहीं देते हैं, इसलिए इन सब का उपचार तो होना ही चाहिए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, एक घंटे का वक्त है। इस एक घंटे में ही हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक बातें आप सबको मिलें। परंतु उससे पहले हम अपनी बहनों से अनुरोध करेंगे कि हमारी ये जो भी मेहमान मंच पर विराजमान है, उनका तिलक से और फूलों से स्वागत करें। इसी बीच हम आप सबका एक संक्षिप्त परिचय भी देना चाहेंगे। वैसे तो ये महान आत्माएं ऐसी हैं जिनका परिचय यदि हम देने लगे तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन संक्षेप में हम इनका परिचय देंगे। हमारे बीच उड़ीसा भुवनेश्वर से हमारी आदरणीय दुर्गेश दीदी जी हैं। ये हमारी एक सीनियर राजयोगा टीचर है, जो पिछले करीब 35 इयर्स से राजयोग का अभ्यास कर रही है। और इस पार्क विंग का जो उड़ीसा जोन है, उसकी आप स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं। साथ ही साथ इनके बहुत सारे शोज जो है टेलीविजन, खास करके जो उड़िया टीवी चैनल्स हैं, उस पर बीच बीच में आते रहते हैं। हमारे बीच ग्लोबल हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी हैं, हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के आप बहुत ही वरिष्ठ भाई हैं और एक लंबे समय से आप राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं। माउंट आबू में जो हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है उसके आप डायरेक्टर हैं और उसके साथ साथ इसके कई और सब ब्रांचेज हैं, उसको भी आप बहुत कुशलता पूर्वक देखते हैं। जिस तरह से स्पार्क विंग है उसी तरह से एक हमारा बहुत विस्तृत प्रभाग है मेडिकल विंग, आप उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे बीच प्रदीप मल्होत्रा जी हैं, प्रदीप मल्होत्रा जी ये भी राज्यों के अभ्यासी हैं, पिछले करीब 16 वर्षों से आप नियमित राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं, आप स्पार्क विंग के कोर ग्रुप मेंबर भी हैं और फाउंडर ऑफ चीफ वैल्यू ऑफिसर प्रदीपम मल्टी एकेडमी एंड प्रदीपम फाउंडेशन, इसके आप फाउंडर एंड चीफ वैल्यू ऑफिसर हैं। खास करके युवाओं से आप जुड़े रहते हैं और जो लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग आप देते हैं इसके लिए आप जाने जाते हैं दिल्ली और आसपास के एरिया में, तो आप लाइफ स्किल्स ट्रेनर भी हैं। और हमारे बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्ता जिन्होंने इस समाज को बहुत नजदीक से देखा है, आदरणीय श्री ब्रजेश चंद्रा जी, आप फॉर्मर डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड संसदीय संस्थान एग्जीक्यूटिव मेंबर विधान परिषद, आपके पास एक आपका परिवार ही कुछ ऐसा है जो उसका एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप एक अध्यापक भी हैं, एजुकेशन के फील्ड में भी आपकी गहरी पकड़ है और एक लंबा अनुभव है। एक लंबे समय से आप अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, करीब 42 वर्षों से आप अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और आज तक आपने करीब 52 PhDs क्रिएट किए हैं। साथ ही साथ आपने एजुकेशन के फील्ड में कई सारे रिसर्च वर्क भी किए हैं, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और यूथ प्रॉब्लम्स आदि ऐसे कुछ विषय हैं, सोशल प्रॉब्लम्स जिस पर आपने कई रिसर्च वर्क किए हैं, आपके कई पेपर्स पब्लिश भी हुए हैं, कई बुक्स भी आपकी पब्लिश हुई हैं और दुनिया के करीब 20 देशों में आपने उसे प्रस्तुत भी किया है और आप एक माने हुए वक्ता हैं जो समय प्रति समय दुनिया के कोने कोने में जा करके खास करके क्रिमिनोलॉजी के ऊपर अपने व्याख्यान देते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे बीच आज 3 महत्वपूर्ण वक्ता हैं, आज के विषय पर ये चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे कि संक्षेप में 5-5 मिनट आप सब पहले इस विषय पर अपना मंतव्य जाहिर करें, अपने विचार रखें और उसके बाद हम कुछ प्रश्न पूछेंगे और उसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे जो युवा के प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी से अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर आप 5 मिनट में कुछ प्रकाश डालें।
ओम शांति। डॉक्टर प्रोफेसर ब्रजेश चंद्रा जी, प्रदीप भाई जी, दुर्गेश बहन और संजय भाई और आप सभी भाई और बहनों, ये जो कुछ भी विषय आज रखा गया है ये करंट विषय है और गहन विषय है, क्योंकि जब हम देखते हैं, जब मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो बहुत चिंता की बात है। रोज न्यूज़पेपर में हम जो भी पढ़ते हैं, चाहे वो क्राइम है, चाहे वो वायलेंस है या सुसाइड्स हैं या कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सब हमारे जो अनस्टेबल माइंड की बात है। कि मन हमारा स्थिर नहीं है, मन हमारा सशक्त नहीं है, तो ये सब कुछ हमें देखने में आता है। और इसके लिए हम बहुत कुछ कर भी रहे हैं, सरकार भी इसके बारे में करती है, समाज सेवी संस्थाएं भी करते हैं, पर मुझे कभी कभी लगता है कि हम प्रॉब्लम के रूट काज में नहीं जाते हैं। क्योंकि रूट काज मैं ये समझता हूं, जो मेरा अपना अनुभव है और जो मैंने देखा है, कि प्रॉब्लम सब जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो सोशल हेल्थ है, चाहे वो एनवायरमेंटल हेल्थ है, चाहे वो हमारी इमोशनल हेल्थ है, ये सब चीजें एक दूसरे से कड़ी की तरह जुड़ी हुई है। हम अगर एक को ठीक करें तो दूसरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इससे मैं समझता हूं कि हमें ये टोटल 360 डिग्री में ये देखना पड़ेगा कि आज की ये जो अस्थिरता है, या जो परिवार टूट रहे हैं, हमारे लिए बहुत चिंता की बात है, एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज है, ये सब मानसिक यूं कहें अस्वस्थ होने के ही लक्षण हैं। आप देखें, हेल्थ जो है उसको अगर हिंदी शब्द लें तो उसका अर्थ है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब ये है कि यू एस्टेब्लिश इन योर ओन सेल्फ, आपको अपने आप को समझने की जरूरत है। हम लोग ये समझते हैं कि जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं समझा है, अपनी लाइफ का चार्ज खुद नहीं लेता है, क्योंकि डॉक्टर्स, हॉस्पिटल या काउंसलिंग सेंटर्स पे हम तब जाते हैं जब हम स्वस्थ नहीं होते, जब हम यूं कहें अनस्टेबल होते हैं, जब हमारे जीवन में हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम किसी को अप्रोच करते हैं। उससे पहले तो हमें अपने आप ही मैनेज करना होता है, और उसके लिए सबसे बड़ा जो इशू है वो है हमारा लाइफस्टाइल, हमारी जीवन पद्धति क्या है। जीवन पद्धति हमारी अगर रॉन्ग है, द वे वी लिव अवर लाइव्स, दैट इज बिकम द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ इलनेसेस, वेदर फिजिकल और मेंटल। और शुरू तो कोई भी बात है, चाहे वो मैं यूं कहूं कि कुछ भी शुरू होता है तो पहले तो संकल्प से शुरू होता है, मन से शुरू होता है। शारीरिक बीमारी का भी कुछ ना कुछ अगर आप देखें, किसी समय 3 बेस्ट सेलिंग इन द वर्ल्ड मार्केट वर ड्रग्स विच वर सेलिंग, वन वॉज टैगामेट विच इज फॉर डाइजेशन, द सेकेंड वॉज इंड्रॉल which is again for anxiety or blood pressure, the third was valium, अब change हो सकता है वो tranquilizer है। तो कहने का भाव ये, जब तक हम root cause में नहीं जाएंगे, जो हमारा जीवन जीने का तरीका है वही faulty हो गया है, और illnesses जितनी भी आ रही है physical या mental, उसका कारण यही है। हमारी जो पुरानी संस्कृति है, या हम यूं कहें जो हमारा पुरानी चिकित्सा पद्धति भी थी आयुर्वेद, उसमें भी इस बात को एम्फेसाइज किया गया है कि जीवन जीने के तरीका क्या है हमारा। वो तो वहां तक विस्तार में जाते हैं कि हर एक व्यक्ति की अपनी प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार उसका भोजन होना चाहिए, प्रकृति के अनुसार उसका व्यवसाय होना चाहिए, प्रकृति के अनुसार उसका जो है चिकित्सा पद्धति भी, चिकित्सा की इंटरवेंशन भी उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। तो सोचने हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, और हमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी ये अंडरस्टैंडिंग दी जाती है कि हम सब यूनिक है, सबके लिए कोई कॉमन फॉर्मूला नहीं है, हम सब विशेष आत्माएं हैं, और हर एक का व्यक्तित्व अपना अपना है। और अगर हम देखें ये जो भी व्याधि या जो आदि जो भी हमारे जीवन में आया है, उसका कारण ये है कि हम शायद अपने आप को समझ नहीं पाए हैं कि हमारे लिए राइट क्या है, हमारे लिए रॉन्ग क्या है, हमारे जीवन की उन्नति के लिए क्या आवश्यक है। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि जो फास्ट हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल हो गया, हम बहुत एम्बिशियस बन गए हैं, उससे क्या है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के कारण हमने अपनी वैल्यूज को छोड़ दिया है। आज अगर कोई व्यक्ति पेशेंस से चलता है तो उसको हम लोग कमजोर समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने माइंड को पीसफुल रखता है तो हम सोचते हैं शायद ये एक्सप्रेस नहीं करता अपने आप को। तो ये जो हमारी क्वालिटीज थी देवर नॉट वैल्यूज जो थी देवर अवर स्ट्रेंथ। आप देखिए पेशेंस एक ऐसी चीज है, या टॉलरेंस या एक्सेप्टेंस या सहयोग देना, दीज आर द वैल्यूज जो हमारे समाज को बांधे रखी हुई थी। अभी हम लोग सोचते हैं शायद ये डिवाइन क्वालिटीज हैं, ये केवल देवताओं में होती है, मैं ये कहता हूं ये ह्यूमन क्वालिटीज है, कंपैशन है, करुणा है, तो ये भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो अगर हम देखें, और तीसरी बात मुझे ये नजर आती कि आज हमारे सामने रोल मॉडल्स कहाँ हैं। अगर हमारे हम पुराने इतिहास को देखें तो स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी या कितने ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब जो नाम हम सुनते थे पढ़ते थे वो कहाँ है हमारे सामने, एग्जाम्पल्स क्या हैं, बच्चे रोल मॉडल किसको बनाते हैं, या तो वो स्पोर्ट्स की पर्सनालिटीज को देखते हैं या फिल्म पर्सनालिटीज को देखते हैं, उनके रोल मॉडल्स वो हैं। तो जो रोल मॉडल्स ही नहीं है हमारे सामने, पेरेंट्स भी अपने कारोबार में अपने व्यवसाय में इतने बिजी हो गए हैं, तो जो नर्चर और जो नरिशमेंट मिलनी चाहिए वो ना मिलने के कारण जो जीवन में शिथिलता आई है, जो जीवन में कमजोरी आई है, वो हमारे मन को भी प्रभावित करती है और तन को भी प्रभावित करती है। हमने जो यहाँ एक रिसर्च की थी, जितने भी लोग ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आए, अगर वो आने से पहले कुछ नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे, अल्कोहल था, टबैको था, उन्होंने कैसे छोड़ा, तो उन्होंने उनके जो एग्जाम्पल, वो रिसर्च हमने आर्काइव्स ऑफ इंडियन साइकेट्री में पब्लिश की, और उन सबका इन्फ्लुएंस ये था कि नेचुरल एवर्शन हो गई। तो अगर हमें कुछ बेहतर मिलता है, कुछ बेटर मिलता है मेडिटेशन से, साधना से या ईश्वरीय ज्ञान से, तो पुरानी चीजें अपने आप छूट जाती हैं। उनमें से मेजॉरिटी को कोई हेल्प नहीं लेनी पड़ी, लेकिन थोड़े से लोगों को कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेने की जरूरत पड़ी, लेकिन नशा पीछे रह गया और वो आगे बढ़ गए। तो आज आवश्यकता में ये समझता हूं एक ऐसी जीवन पद्धति की है, एक ऐसी नरिशमेंट की है, एक ऐसी पालना के तरीके की है, जिससे हम जो पुरानी चीजें हैं उनको पीछे छोड़ सकें और अपने जीवन में भरपूरता महसूस करें, फुलफिलमेंट महसूस करें। आज जो खालीपन है वो किस चीज से भरा जा सकता है, लोग बहुत तरीकों से भरने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आध्यात्मिकता जो है वो हमें फुलफिलमेंट देती है, वो हमारे जीवन को सशक्त बनाती है और जीवन में एक पर्पस देती है। तो वो अगर हम उस चीज के महत्व को जाने, कुछ भी हमारा व्यवसाय हो, प्रोफेशन हो, तो आज जरूरत है कि हम उसको ब्लेंड करें स्पिरिचुअलिटी से। एक कंप्लीमेंट्री हो सकता है जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी की बात है, साइंस में हम बहुत आगे चले गए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमारी पर्सनल वैल्यूज है, वो कोर वैल्यूज है जो हमेशा हमें क्राइसिस के समय में, अभी जैसे मैं यूं कहूं कभी कभी जीवन में फेलियर्स आती है, अभी जो चंद्रयान की सक्सेस मिली, तो लास्ट टाइम जब हमें फेलियर मिली थी, फेलियर को भी हम एक्सेप्ट कर सकें विद अ स्माइलिंग फेस, वो भी एक चैलेंज है हमारे लिए। तो स्पिरिचुअलिटी वो हमें स्ट्रेंथ देती है, वो हमें सपोर्ट देती है, हमें नरिशमेंट देती है, हमें आगे बढ़ाती है कि जीवन में अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। तो अगर हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी यूं कहें अपनी जीवन पद्धति और अपने जीवन वैल्यूज को साथ लेकर चलते हैं, तो हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा और जो समस्याएं आज हम देख रहे हैं वो अपने आप समाप्त हो सकती हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स प्रताप भाई जी। अभी हम अनुरोध करते हैं ब्रिजेश चंद्रा जी से, कृपया आप भी अपने विचार रखें।
ओम शांति। मेरा परिचय बहुत लंबा दे दिया हमारे मित्र ने, एक साधारण सी बात समझनी है। कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी, चाहे यहां हो या विदेश में, वो जब तक शिक्षित, एजुकेटेड, अब मैं इस दो बार शब्द बोल रहा हूं, शिक्षित एजुकेटेड, शिक्षा क्या चीज है। शिक्षा का अभिप्राय केवल एक था कि हम वो समझ सकें जो हमारे चारों तरफ है और उसी के अनुसार हम अपनी प्रतिक्रिया करें। अगर किसी आदमी को सामने आने वाली परिस्थिति के समय ये ज्ञान और भान नहीं है कि उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो हम पहला शब्द बोलते हैं तुम क्या बिल्कुल अशिक्षित हो। शिक्षित का मतलब ये कभी ना लगा लें कि ये कोई सिलेबस है, ये कोई यूनिवर्सिटी स्कूल एजुकेशन है। ये तो माध्यम होते हैं समझने के, परंतु शिक्षा के माध्यम बहुत से हैं। डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे, डॉक्टर साहब मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं सोशल साइंस का स्टूडेंट हूं। हम लोग करीब करीब एक ही जगह आके खड़े हो गए कि ज्ञान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमको ये ज्ञान हो। मैं, आपने कुछ नाम लिए, मैं भी कुछ नाम ले लेता हूं। मैं नहीं जानता कि जिस तुलसीदास को हम लोग पढ़ते हैं या कबीर को पढ़ते हैं या रहमान को पढ़ते हैं, रहीम को पढ़ते हैं, चाहे हम किसी को पढ़ते हों, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने शिक्षा कहाँ ली। और ऐसा कोई सबूत भी कुछ को दे सकता कि तुलसीदास जी उस विद्यालय में पढ़ते थे, उस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, या वो यहां से पढ़े थे या वहां से पढ़े थे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन उन्होंने जो जागृत किया वो अपने ज्ञान को जागृत कर लिया, औपचारिक शिक्षा को नहीं। आप दो चीजों में अंतर कर लें, ज्ञान और औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा हैव नो कोरिलेशन विथ नॉलेज, एंड नॉलेज इज वन एंड वन थिंग ओनली, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन बिफोर यू थॉटफुली एंड जस्टफुली, विचार करके और न्याय संगत ढंग से अगर हम अपनी प्रतिक्रिया देने लगे तो हम शिक्षित और ज्ञानवान दोनों कहलाएंगे। इसके लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। मैंने एकेडमिक वर्ल्ड में तमाम डिग्रियां ले डाली, तमाम जगह गया, तमाम मैंने अध्ययन किया और आखिर में मैं एक नतीजे पर पहुंचा कि जब तक आप स्वयं जागृत ना हो जाए तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आप वास्तव में करना क्या चाहते हैं। अब मैं, ये तो बात हो गई, एक ऑफिशियल तरीका है इंट्रोडक्शन का कि हम लोग किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। मैं बड़ी आसान सी बात आपको समझा दूं का कोशिश करूंगा कि आप लोग समझें और इस पर चिंतन करें। देखिए, हमारा इतिहास जो है वो गुलामी का इतिहास रहा। हमारी संस्कृति अपनी जगह पे थी, हमारी सभ्यता अपनी जगह पे थी और वी आर रूल्ड बाय द पीपल हु नेवर अंडरस्टूड आवर कल्चर, आवर मेथोडोलॉजी, आवर वैल्यूज। नाउ आई एम कमिंग टू द सोशल वैल्यूज स्पेसिफिकली बिकॉज आई एम फ्रॉम दैट फील्ड। वी नेवर अंडरस्टूड कि व्हाट इज द सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य क्या होते हैं। अब एकाएक इस देश को आजादी से मिलने से कोई 2-3 साल पहले भारत के संविधान को बनाने की एक रूपरेखा तैयार हुई। कुछ लोगों को निर्वाचित किया गया जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे जो बाद में इस देश के राष्ट्रपति बने, और ड्राफ्ट कमेटी के लिए एक ऐसा व्यक्ति चुना गया जो तमाम विदेशों की डिग्रियां लिए हुए था, जिन्हें हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं। इसके अलावा 278 मेंबर्स और भी थे जो अलग अलग लाइन्स के एक्सपर्ट थे, वो सब एक जगह इकट्ठे किए गए और 5 देशों का संविधान मंगाकर उसका अध्ययन करके और फिर उसकी एक एनालिसिस करके हम लोगों ने एक संविधान की संरचना एक प्रारूप प्रस्तुत किया जो हमने अपनी आजादी से कुछ माह पूर्व नवंबर के महीने में एक्सेप्ट किया कि आजाद देश का, आजाद हिंदुस्तान का, आजाद भारत का, आजाद इंडिया का नाम जो होगा वो बहुत लंबा नाम आगे लिखते हुए दैट इज इंडिया भारत। अब आप आया कि हमको करना क्या है। हमारे सामने उस वक्त भी 30-35 करोड़ की आबादी थी जो शायद विश्व के बहुत बड़े हिस्से को मिला के नहीं बनती थी। हमारे पास संसाधन बिल्कुल ना के बराबर थे, संसाधन हमारे पास थे ही नहीं क्योंकि जो शासक थे वो हमको इतना कर्जे में डाल के गए थे क्योंकि उनको तो जाना था, ये उनको 10 साल पहले 20 साल पहले अंदाजा हो गया था कि अब हमको जाना पड़ेगा। और द्वितीय विश्व युद्ध हो जाने के बाद तो बिल्कुल ही तय हो गया था कि अब साम्राज्यवाद इंपीरियलिज्म का अंत होगा और एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था आएगी। तो हमने 5 चीज गारंटी की अपने संविधान में। नंबर 1 रोटी, नंबर 2 कपड़ा, नंबर 3 मकान, नंबर 4 दवाई, नंबर 5 पढ़ाई। अब हम इसको अलग अलग तरीके से लें और अलग अलग टाइम पीरियड्स में देखें और अलग अलग प्राइम मिनिस्टरों का जिन्होंने देश की हुकूमत संभाली, जिस पार्टी ने भी संभाली, उन्होंने इस लाइन में किया क्या। तो हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि इस 30 करोड़ 35 करोड़ जो अब 140 करोड़ है इसको रोटी कैसे दी जाए। तो देखिए, दो तरह की पूंजी होती है किसी भी समाज के पास। एक होता है कैपिटल इंसेंटिव, कैपिटल इंटेंसिव जो समाज होता है, अर्थात वो समाज जो बहुत अमीर है। एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स किसके पास है? भारत के पास मानव संसाधन शक्ति बहुत ज्यादा थी लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम उनका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाए। मैं अभी दो आपके सामने ऐसे उदाहरण दूंगा कि आप सभी लोग इस पर चिंतन करें। हमने राइट टू रोटी बनाया, कपड़ा बनाया, राइट टू मकान बनाया और अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारों ने उसके नाम बदल बदल के इन तीन चीजों को मुहैया कराने की कोशिश की जिसमें हम लोग आज तक पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते क्योंकि हमारी आबादी उसी रफ्तार से बढ़ रही थी, हमारे संसाधन उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे थे। अब फाइनली हम लोग कहां आ गए? हमने क्या गलती कर दी कि सबसे पहले अपने संविधान में एक व्यवस्था कर दी RTE, राइट टू एजुकेशन, अर्थात हर बच्चे को यह अधिकार प्राप्त है कि वो शिक्षा ग्रहण करे। और 1986 में कस्तूरी रंगन जी, जो बाद में जो चंद्रमा की बात कर रहे थे, उसके चेयरमैन हुआ करते थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने इसमें काम किया और एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई जिसे हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा। परंतु तत्कालीन सरकार ने जब उसको पढ़ा और समझा तो उन्होंने कहा हमारे पास इतने भौतिक संसाधन ही नहीं है कि यह हम मुहैया करा सकें। तो ये ठंडे बिस्तर में चला, बस्ते में चला गया और कोल्ड स्टोरेज में पड़ा रहा। अभी 10 साल के अंदर फिर कुछ जागरूकता आई और अभी हम लोगों ने इसे NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कह के पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करके इसको पास करा लिया। और हमने ये अपेक्षा करी, प्लीज ये अपेक्षा करी कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने हालातों के हिसाब से इसको मॉडिफाई करें और इसको इंप्लीमेंट करें, लेकिन उसका कुछ बेसिक आधार उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। अनफॉर्चुनेटली 2023 में हम लोग आ गए, 2022 में यूपी इज द फर्स्ट स्टेट जहां से मैं हूं जिसने इसको 2022 2.2 दिया, हमने 2.0 को जब इसको तैयार किया तो आपको सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा है, गरीबी के हिसाब से हो सकता हम दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे हों, लेकिन हम बिहार उड़ीसा से बहुत ज्यादा आगे भी नहीं है। अब प्रश्न ये उठा कि हम लोग करें क्या, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया और इस समिति का गठन करने के लिए 22 दिसंबर 2022 को हमारे योगी जी ने वृंदावन में एक वृहद 275 सिलेक्टेड इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया और एक बैठक करी। इसी तरीके से आप लोग बैठे हैं वहां फोगला आश्रम है उसमें, और योगी जी जितना सिंपल खुद रहते हैं उतना ही सिंपल खाते हैं और खिलाते हैं, वो उन सबको इकट्ठा किया और कहा कि ओपन हार्ट से आप मेरे को क्रिटिसाइज करिए, मेरे को इवेल्युएट करिए, मुझे सजेशंस दीजिए कि मैं इतने सीमित संसाधनों में इसको कैसे लागू कर दूं, और अगर कोई संशोधन हम लोग कर सकें तो मैं तैयार हूं इस पॉलिसी के अंदर संशोधन करने के लिए। वो 2022 अभी 3 महीना पहले छपकर हमारी विधानसभा से पारित होकर कानून की शक्ल में पास होके मेरे पास आई है, क्योंकि मैं उस समिति का अध्यक्ष भी हूं। जब मैंने उसको अध्ययन करना शुरू किया तो मैं उस टाइम में ऑकलैंड यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड की राजधानी में पढ़ाने के लिए जा रहा था तो अपने साथ उसको मैं ले गया। मैंने बड़ी गहनता से उसको अध्ययन किया, एक एक शब्द, एक एक चैप्टर, एक एक लाइन, और मैं क्योंकि समाजशास्त्र का आदमी हूं तो सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर को बहुत समझता था ऐसा मैं मानता हूं, तो मैंने उस सोशल स्ट्रक्चर में इसको फिट करके देखा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें कुछ ऐसी बेसिक गलतियां हो जाएंगी, जैसे कानून तो बहुत बने, क्राइम अगेंस्ट वीमन हमने एक बनाया, आज 75 वर्ष बाद भी हम में से कोई कानून का आदमी यह नहीं कह सकता कि वो इसमें कामयाब हो गया और उसने ये राइट को वाकई में दिलवा दिया। आज भी हमने उसको जुडिशियल प्रोसेस पर डाल के इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि हम इस पर काम ही नहीं कर पाए। इसी तरह से बहुत सी लाइब्रेरी में हमारे एक्ट रखे हुए हैं, ये एक्ट भी उसी लाइब्रेरी में चला जाता अगर ये सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ होता और ऐसे लोगों के हाथ में आ गई जो कुछ भी हारने को तैयार थे, सत्ता भी हारने को तैयार थे, परंतु इसको लागू करने का संकल्प रखा।
बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि थोड़ा समय की भी पाबंदी है
जी,
और हम विषय से ही थोड़ा सा जुड़ के रहे, और भी वक्ता है और हमें आपसे प्रश्न भी पूछना है
जी। अभी मैं आई एम सॉरी बट द बेसिक थिंग इज राइट टू एजुकेशन हम 10 साल पहले लाए और एजुकेशन पॉलिसी 10 साल बाद लाए, कानून हमने पहले बना लिया उसको लागू कैसे करेंगे वो हम 10 साल बाद सोच पाए, तो उसमें कुछ विसंगतियां आ गई और वो बात जो डॉक्टर साहब कह रहे थे उसको उसमें फिट इन करते हुए मैं
जी धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स। अभी हम अनुरोध करते हैं प्रदीप मल्होत्रा जी से कि आप भी संक्षेप में समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए, क्योंकि आपसे हमें और भी प्रश्न भी पूछने हैं, तो जो भी आप सब बातें करें टू दी पॉइंट करें तो ऑडियंस को ज्यादा लाभ मिल पाएगा। तो प्रदीप मल्होत्रा जी कृपया आप भी अपने विचार रखें।
ओम शांति, ओम शांति। संजय भाई, सबसे पहले तो मैं बाबा का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज मुझे अपने सीनियर भ्राता डॉक्टर मिड्डा साहब जी के साथ, हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं प्रोफेसर ब्रजेश चंद्रा जी, जो कि उसी कॉलेज उसी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे जहां मैं पढ़ता था, तो उस लिहाज से भी मेरा इनका रिश्ता है और 1972 और ब्रजेश दीदी जिनका प्यार और उनकी दृष्टि हमेशा हमें मिलती रहती है, वेरी डिवाइन सोल, और संजय भाई आपका साथ भी हमेशा हमारे साथ रहा। फ्रेंड्स माई अप्रोच विल बी वेरी प्रैक्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ की वट आई वॉज बिफोर कमिंग टू ज्ञान बिफोर 16 ईयर्स एंड वट हैपन टू मी दैट हाउ आई गॉट ट्रांसफॉर्म्ड विद इन द लास्ट 16 ईयर्स आई एम स्टिल द स्टूडेंट ऑफ दिस डिवाइन यूनिवर्सिटी एंड माई शेयरिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ विच इज कॉल्ड द साइंस ऑफ ऑन्टोलॉजी. That is why people behave the way they behave. And art and science of Raj Yoga, that how it impacts your life and transforms your mindset. How from an unstable mind to the stable mind, it not only helps but it makes stay with you for the lifetime. Our youth are very have very high aspirations. They are very ambitious. They want to do something in life. And they are very important projects and schemes which have been launched by the government of India and state governments also, like, you know, your skill building and other areas. Unki ambitions jo hai, wo un tak hi kyon reh jati hain? Unke mastish mein hi kyon reh jati hain? उसको वो शेप क्यों नहीं दे पा रहे? ये बड़ा सोचने का एक मुद्दा है. इसके कारण क्या है, इसका कॉज क्या है? जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट, दैट विल कम टू यू कम लेटर ऑन. उसे 65% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज यूथ एंड दिस पॉइंट वी नोटेड दैट मोर देन 40% ऑफ दिस पॉपुलेशन ऑफ यूथ 40% or 65% is suffering from one or other mental illness or disorder. It's a major concern for all of us. 30% of the students, rather maybe more, that who are neither in the education and neither in the employment, causing further confusion and instability in their mind. And that is, and including the environment that we are living in, the atmosphere starting from home with the families to the neighborhood, to the community and the societies, to the state and the city and the nation, the environment which has been created is also have a negative influence on them. The various reasons for that, which we will come to later because we will explore further during our discussions on these technical and other causes or social causes and the what makes a family influence the child, where the child is not able to produce the desired results that he wants for his life. I'll just like you to be present to your own life, your own environment, and I'll take you down to when you are 4 years old. Please listen to me. 4-year-old child is still running our life. घर पर कोई मेहमान आता है, दो बच्चे हैं, एक 8 years एक 4 years. बड़ा बेटा खेलता हुआ अपनी आगे ट्रॉफी दिखाता, अंकल आंटी देखो मैंने ये ट्रॉफी जीती, मेरे एजुकेशन में ए ग्रेड्स आए हैं, ये है वो है, वो दिखा रहा होता है. इतने में छोटा भाई अंदर एंटर करता है. छोटा भाई अंदर एंटर करता तो मां क्या कहती है? चुप. देख रहे बड़ा भाई अपनी ट्रॉफी दिखा रहा है, वो बच्चा वहां सहम के साइड में खड़ा हो जाता है. मां ने उस वक्त उसकी जुबान बंद नहीं करी, पूरे जीवन के लिए बंद कर दी. ही लूजेज हिज सेल्फ एस्टीम, ही लूजेज हिज कॉन्फिडेंस. और जब वो बड़ा भी हो जाता है तो वो क्या होता है कि जब स्कूल जाता है तो टीचर उससे पूछती है एक क्वेश्चन जो कि उसको आता है, लेकिन वो खड़ा होते होते बैठ जाता है, आई एम नॉट गुड इनफ. मैं इसको उत्तर नहीं दूंगा तो क्या होगा? मेरी मां ने भी चांटा दिखाया था. वो बैठ जाता है एंड दैट रन्स हिज लाइफ. आई एम नॉट गुड इनफ. व्हेन द चाइल्ड बिकम्स अ टीन, बिकम्स अ रिबेल, उसकी इच्छाएं होती हैं कुछ अंदरूनी, एक नेचुरली हार्मोनल भी कुछ इच्छाएं होती हैं जो उसको माइंडसेट को कहीं ले जाती हैं. लेकिन क्या घर वाले मानते नहीं है? नहीं, मैंने 6 बजे अपनी फ्रेंड्स को मिलने जाना, नहीं अंधेरे से पहले घर के अंदर, या कई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बच्चों पे, तो चाइल्ड थिंग्स आई डोंट बिलोंग हियर। थर्ड, व्हेन ही बिकम्स अडल्ट, व्हेन ही बिकम्स 18, ही वांट्स टू लीव एवरीथिंग, आई एम ऑन माय ओन। नाउ हाउ राजयोगा ट्रांसफॉर्म्स दिस सिचुएशन इज, आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड देन वी विल कम टू द पॉइंट, कि राजयोगा इज अ योगा ऑफ द माइंड। We and it takes you, connects you with yourself, and connects you and me with the Supreme Soul. So that connection, because we are harnessing all our positive energies, all our resources from the Supreme directly. That link is established through Raj Yoga meditation, as Dr. Saab also very much emphasized on the lifestyle of Raj Yoga that impacts our life. It's not a sort of a tool, it's a way of life. I give you an example. My own family, actually my yugal, Sushmaji is her name, she brought me to Gyan. वो कहते भी मेरा पति किसी तरीके से बदल जाए, मतलब ज्यादातर हर पत्नी यही चाहती है। सो फ्रॉम पीके आई बिकेम बीके। So when doctor was saying the external influences of substances, I have a chain smoker, 40 cigarettes a day, and used to take alcohol also, and 16 years left. That is the impact. So मेरे को खुशी होती है कि अपने authentic example देकर भी मैं राजयोग के बारे में बता सकता हूँ। बाकी डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, how it works. It works. आप एक experiment घर पे करिएगा, एक जग पानी का भरिए, एक ग्लास में पानी भर के रख दीजिए और उस ग्लास में थोड़ा सैंड डाल दीजिए और घोल दीजिए, और नीचे एक बाल्टी भी रख दीजिए, फर्श गंदा नहीं हो, और उस जग में से वो पानी इसमें पोर करते जाइए, डालते जाइए, तो गंदा पानी निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, और धीरे धीरे स्वच्छ पानी उसके अंदर भरता जाएगा। दैट इज हाउ राजयोगा डिटॉक्सिफाइज अवर माइंड, बॉडी एंड सोल।
थैंक यू प्रदीप भाई जी। जी बहुत अच्छा लगा सुन करके कि आप पीके से बीके बन गए, बहुत पीते भी थे सिगरेट भी और दूसरी चीजें भी। लोग पूछते थे कि पीके जी कहाँ है, तो बोला वो तो बीके बन गए। लौकिक में लोग इनसे हंसी करते हैं। तो राजयोग में इतनी शक्ति है कि वो हमारी कुप्रवृत्तियों को बहुत सहज रूप से छुड़ा देता है और हमें मानसिक मनोबल प्रदान करता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर प्रताप जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे कि कहा कि आज हमारा मन सशक्त नहीं है, हमारा लाइफ स्टाइल बहुत फास्ट हो गया है, हमारे जीवन में वैल्यूज की बहुत कमी हो गई है, जिसके कारण से ये मानसिक दुर्बलताएं पनप रही है। भ्राता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसके जड़ में कौन सी चीज है, क्यों हमारे जीवन में दिनों दिनों वैल्यूज की कमी आती जा रही है, क्यों हमारा ये जो मन है ये दिनों दिन इतना निर्बल होता जा रहा है, इसके पीछे कोई ऐसा ठोस स्पिरिचुअल कॉज?
ओम शांति। प्रोफेसर ब्रजेश जी कह रहे थे कि शिक्षा, और साथ में इन्होंने एग्जाम्पल भी दी तुलसीदास जी की, कबीर की, जिन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी। मैं ये कहूंगा शुरू से जो अपब्रिंगिंग की बात होती है, अपब्रिंगिंग में हमें ये सिखाया जाता है कि भाई हमें आगे बढ़ना है, कम्पीट करना है, हर चीज में आगे बढ़ने की बात आती है। अभी हम देखते हैं जो प्रेशर हमारा यूथ महसूस कर रहा है, उस प्रेशर को कोप अप करने की कोई उसको तरीका नहीं समझाया जाता। प्रॉब्लम्स हैं और मैं ये समझता हूं कि प्रेशर्स तो हमेशा रहेंगे, लेकिन हम प्रेशर्स को कोप अप कैसे करें, प्रेशर्स को कैसे हम समेटें, और हम कैसे अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करें, तो उसके लिए जो फॉर्मूला वही है कि एक तो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं और दूसरी हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ है। हम एक्सटर्नल प्रेशर्स को नहीं हटा सकते, लेकिन अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो वो इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जरूरत है। और जो ट्रिगर्स हैं जीवन में, ट्रिगर्स क्या होते हैं, हम हर्ट महसूस करते हैं, हम फेल्यूर को अंदर ले जाते हैं, हम कंपीट करते हैं, हमें कभी कोई ठोकर लग जाती है तो संभल नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दिस शुड बी पार्ट ऑफ इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, जो हमारी संस्कृति है, जो वैल्यूज है हमारी, उन वैल्यूज को फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। हमें मेडिकल विंग की बात कर रहे थे, हमने वहां एक प्रोग्राम डिजाइन किया जिसको हम कहते हैं वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच, क्योंकि हर प्रोफेशन में स्ट्रेस है, कंपटीशन है, हर प्रेशर में लोग कट थ्रूट कंपटीशन हो गया, आगे जाना चाहते हैं, दूसरे को कभी कभी उनकी फॉल्ट फाइंडिंग भी करते हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। तो जैसे यूथ की बात है तो यूथ में ये जरूरी है कि उनके पास ऑप्शंस होनी चाहिए। अगर एक चीज में हम फेल हो जाते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। और पेरेंटिंग की बात भी बहुत जरूरी है, जीवन में एटीट्यूड क्या है। अब देखिए, अभी जो बात की कि भाई पानी हम ऊपर से पॉजिटिव थॉट्स लेते जाएं, वैल्यूज लेते जाएं, तो हम अपने आप को डिटॉक्स कर पाएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये भी जरूरी है कि कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम हो हमारा। एक ऑप्टिमिस्ट होने की जरूरत है, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है। मैं ब्रह्मा कुमारीज में ये मानता हूं कि दिस इज द बेस्ट स्कूल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, कि हम ये मानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है। अगर हम स्टंबल भी करते हैं, ठोकर भी खाते हैं, अगर फेल भी होते हैं, तो उसमें भी कुछ कल्याण है। अगर मान लीजिए आज कोई आपको रुकावट डाल रहा है, तो वो रुकावट भी आपके लिए आपकी शक्ति को बढ़ाएगी। अगर आपको कोई एडवर्स रिमार्क्स भी मिल रहे हैं और आप अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं, आप अपने आप, तो अगली बार आप उससे भी बड़ी मुश्किल को संभाल सकेंगे, उसको मैनेज कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों में आज एक अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि माइंड और बॉडी जो है वो इंटरकनेक्टेड है। हमारा वर्क और हमारी पर्सनल लाइफ भी इंटरकनेक्टेड है, हमारा वर्क और हमारी फैमिली लाइफ भी इंटरकनेक्टेड है। वर्क में कुछ होता है तो फैमिली को प्रभावित करता है, अगर आप फैमिली में डिस्टर्ब हैं तो वो आपके वर्क को प्रभावित करता है। ये हमारा रोल और रिलेशनशिप, ये दोनों ही हमें प्रेशर कॉज करते हैं। तो इनको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। और एक जो इनहेरेंट जो अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान जो भी है हमारे पास, हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत है। आप कहीं भी एयरपोर्ट पे जाएं, बुक स्टॉल पे जाएंगे, तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट की इतनी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन यूज जरूरत इस बात की, जो भी ज्ञान हमारे पास है उसको यूज करने की बात है। अभी लास्ट जो हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं तो उसमें एक लाइन आई थी जो मुझे अभी तक याद है कि जो ज्ञानी आत्मा है वो कभी धोखा नहीं खाएगी, उसकी डेप्थ होगी। ज्ञान को भी हमें अपना बनाने की जरूरत है। और साथ साथ हम जो मेडिटेशन की बात करते हैं, मेडिटेशन क्या है, आप देखिए, हम साधारण भाषा में हम मेडिटेशन को ध्यान कहते हैं। तो ध्यान मतलब हमें अपने हर संकल्प पर अटेंशन देने की जरूरत है, अपने हर शब्द पर अटेंशन देने की जरूरत है, अपने हर कर्म पर अटेंशन की देने की जरूरत है। हाउ डू वी फील, हाउ डू वी थिंक, हाउ डू वी एक्ट, उस पर अटेंशन देने की जरूरत है। वो जब अटेंशन देंगे और हम ब्रेक लगा सकें, जो हम यहां समझते हैं कि हमारी बुद्धि का काम क्या है, हमारी बुद्धि सबसे पहले दिव्य बनती है, ज्ञान के द्वारा हम बुद्धि को सशक्त बनाते हैं। तो बुद्धि जैसे हमारी ब्रेक है, गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी ब्रेक पावरफुल नहीं है तो वो गाड़ी आप चला नहीं सकेंगे। तो लाइफ में भी हमें एक सेंस ऑफ कंट्रोल चाहिए, एक सेंस ऑफ लाइफ में हमें, यूं कहें, जिसको हम कहते हैं हम कुछ भी पढ़ जाएं, इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, लेकिन जब तक हमने सेल्फ मास्टरी की साइंस नहीं पढ़ी है तब तक हमें मुश्किलें आती रहेंगी। जरूरत इस बात की है कि हम वो अपने मन को कैसे संभाले। कहते भी मन जीते जगत जीत, तो मन को जीतने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन को मास्टर करने की जरूरत है, मन को सुमन बनाने की जरूरत है। अगर हम वो पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिज्म और वैल्यू बेस्ड थिंकिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सी समस्याएं शुरू ही नहीं होंगी। प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने की बात नहीं करें, प्रॉब्लम्स आरंभ ही नहीं होंगी तो हम फिर हमारे लिए सब कुछ सहज हो जाएगा, इजी हो जाएगा।
जी ये बहुत सही है कि जीवन में वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। अध्यात्म हमें वो वैल्यूज प्रदान करता है, राजयोगा मेडिटेशन हमें वो मूल्य प्रदान करता है। आपकी दो बातें बहुत अच्छी कि हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए, अपने अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी और वैल्यूज के प्रति। और आपकी दूसरी बात कि हम ज्ञान सुनते तो बहुत हैं, सुनने की आदत सी पड़ गई है लेकिन जीवन में उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो हमें ज्ञान को जीवन में इम्प्लीमेंट करना है और वही यहाँ पर सिखाया जाता है। अभी हम चलते हैं प्रदीप मल्होत्रा जी की तरफ और आपसे एक हम प्रश्न ये पूछना चाहेंगे कि आज के समय में ये जो मॉडर्न गैजेट्स है, मोबाइल है या इंटरनेट है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, आज का युवा एक तरह से इसका अधीन बनता जा रहा है, इसका बहुत एक्सेसिव यूज कर रहा है वो, तो क्या इसका भी हमारे मेंटल हेल्थ पे कोई असर पड़ता है?
बड़ा अच्छा सवाल है आपका संजय भाई। इससे पहले कि मैं इसका उत्तर दूं, मैं इतने एलीट ऑडियंस, हाईली क्वालिफाइड ऑडियंस हमारे सामने है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप सिर्फ 10 मिनट के लिए दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने जीवन साथी को छोड़ सकते हैं? हैं जी? नहीं। तो आई एम नॉट टॉकिंग जीवन साथी योर स्पाउस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोबाइल फोन, द गैजेट विच हैज द मैक्सिमम इम्पैक्ट इन आवर मेंटल कंडीशंस, पर्टिकुलरली द यूथ। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में पॉजिटिविटी भी है, ये नहीं कि गलत है, उसका इस्तेमाल हम भी करते हैं, लेकिन मोस्टली इट इज सम काइंड ऑफ ए वल्गर जोक्स, सम काइंड ऑफ ए यू नो और जजमेंटल वैल्यूज आर बींग शेयर्ड ओवर देयर। OTT, we are ashamed to see this on the this thing in the OTT में जो भी दिखाया जाता है बंद देख नहीं सकते, वो इन्फ्लुएंस करता है बच्चों को। अब आप देखिए यूथ को, आप देखेंगे उसमें लगे हुए हैं या सो रहे हैं तो मोबाइल भी सराने रखा हुआ है नीचे तकिए के, सो द वाइब्रेशंस एंड यू नो दैट ट्रांसमिट्स फ्रॉम देयर इम्पैक्ट्स द माइंड एंड डैमेजेस द माइंड एंड द ब्रेन। So gadget is, if misused, are very very harmful. Any gadget. Here also I like to add in addition to the gadgets, मैं थोड़ा environment के बारे में यहीं add करना चाहूँगा कि सब कुछ environment के अंदर ही है कि what are the external influences? Let's start from the family. Parents want to fulfill their unfulfilled desires, fulfill their unfulfilled desires through their child. मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया, मैं तुम्हें बनाऊंगा। बच्चा कहता है भाई मुझे तो म्यूजिक भी पसंद है, मैं तो गिटारिस्ट बनूंगा, मैं तो इंडियन आइडल बनना चाहता हूं, मुझे यहां क्यों डाल रहे हो? दैट इज वन एग्जाम्पल विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, बिकॉज टाइम कम है, ज्यादा उदाहरण भी मैं नहीं ले सकता। Other thing is, when we talk, there are three divides. Please note, my dear friends, environmental divide, social divide, spiritual divide. Environmental is the environment which are created by ourselves. And what environment that we create, it comes back to us multifold. When we send positive vibrations, energy, and we are at that frequency, the positivity will come back to us. But if we are transmitting negative, even as parents, what happens? Mother wants to bring up the child differently, father wants to bring out differently. Has a great impact on child's mindset. That is causes depression, anxiety, because apni ichha puri nahi kar sakta. There is no freedom of self-expression with the child. He is confused. The other thing is, सोशल डिवाइड, उसके अंदर आपका आ गया पेस्ट, जिसको हम कहते हैं ई पेस्ट, ई पॉलिटिकल सिचुएशंस, इकोनॉमिकल सिचुएशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लाइक आजकल हर चीज जो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके यूज है, बहुत यूज है, लेकिन अपने असली इंटेलिजेंस को हम भूलते जा रहे हैं, अपने आप को हम भूलते जा रहे हैं उस वातावरण में. एंड अनदर थिंग, द स्पिरिचुअल डिवाइड विच इन्फ्लुएंसेस ऑल दीज, बिकॉज दैट स्पिरिचुअल डिवाइड वी आर नॉट कनेक्टेड इन आवर सेल्फ एज शेयर्ड अर्लियर. The only thing that can connect you to your authentic self, that you are a soul and you are connected with the Supreme Soul, then you find the transformations and it influences your complete thought process. Thought takes a shape of your words. It starts, everything starts from the karma ki baat chal rahi thi. Thought. Then words. Words bring an action. Action bring a result in your life. And every repeated results become your habit. And your habit forms your character, and your character forms your destiny. So we have to work here between the two ears in the head. We transform this by bringing in the Rajyoga lifestyle. We have brought in our family. It's not only me and my wife who are here, my children who are staying abroad are practicing. Hamari jo maid hai, उनको शुरू में हमने ओम शांति कहना सिखाया, वो अपने परिवार तक ज्ञान को ले गई. हमारा ड्राइवर जो है उसको भी हमने कहा कि आप, वो उनके वातावरण वहां भी चेंज हुआ. सो इट्स अ रिपल इंपैक्ट, रिपल इफेक्ट. इवन आइंस्टाइन, साइंटिफिकली स्पीकिंग, आइंस्टाइन ने शेयर्ड व्हाट, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस एंड एनर्जी. इफ दे आर अलाइंड इन अ पॉजिटिव वे, इंपैक्ट्स आवर लाइफ वेरी वेरी पॉजिटिवली. एंड ही सेज, इट्स नॉट फिलॉसफी, it is science. So the time has gone when there was a science or spirituality. The time has come science and spirituality. Thank you.
जी, अभी हम फिर से आते हैं श्री ब्रिजेश चंद्रा जी की तरफ, और आपसे हम एक बहुत ही अहम प्रश्न पूछना चाहते हैं. चूंकि आप एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहां पर राजनीति, शिक्षा और समाज सेवा का एक बहुत सुंदर ब्लेंडिंग है, एक बहुत गहरा रिश्ता है इन तीनों का आपके परिवार में. आप सरकार से जुड़े हुए, सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या सरकारी स्तर पर भी युवाओं के मेंटल हेल्थ के लिए कोई प्रयास हो रहा है?
आपके इस प्रश्न का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि सीधा सीधा यह हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है. 50s में, अर्ली 50s से 1950, 52, 53, 54, आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ ए कैम्ब्रिज कॉलेज नोन एज सेंट पीटर्स. इन दैट प्रीडोमिनेंटली ए चर्च वॉज देयर, वहां एक चर्च थी जो आज भी आगरा में मीलों दूर से देखी जा सकती. उस चर्च में हर फ्राइडे को वो हमको ले जाते थे और बैठा देते थे, और फिर हमको जिस विश्वास को मानते थे उसके विषय में बताते थे. आप सही मानिए, मैं बहुत वर्षों तक यही नहीं समझ पाया कि पूजा का अलग अलग तरीका क्या होता है और क्यों होता है, और इतने सारे भगवान हैं कैसे. खैर, बात आगे बढ़ी, मैं एजुकेशन में आगे बढ़ता गया, बात को आगे चलती गया. शायद 2005 की बात है, अगर मैं सन में कुछ भूल नहीं कर रहा हूं. मैं अपने परिवार का सबसे छोटा बच्चा हूं, तो मेरी सभी बहनें मुझसे बड़ी, तो वो सब शादियां वादियां होके चली गई, सब चली गई अपने अपने घर पे, अपने अपने देश, अपने प्रदेश में, जाने कहां कहां गई. मेरी पीए जो है वो आजकल ह्यूमन राइट कमीशन की मेंबर है, निर्मला दीक्षित जी, वैसे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुत्र वधू भी लगती हैं. वो आई मेरे पास और आके मुझसे बोली कि सर, एक अपॉइंटमेंट लिस्ट से बाहर कुछ लोग आए हुए हैं, तो क्या आप कुछ उनसे बात करना चाहेंगे. मैंने कहा देखो, कॉफी का टाइम हो रहा है, बुला. तो तीन छोटी लड़कियां सफेद लिबास पहने हुए आई और आके खड़ी हो गई। मैंने कहा को बच्चों तुमको क्या काम है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी थी मुझे पूछना था कि क्या काम, क्योंकि मेरे पास तो वही आदमी आ सकता है जिसका कोई पर्पज हो, कोई प्रॉब्लम हो। बोली नहीं नहीं भैया जी, भाई जी, भाई जी आज रक्षाबंधन है। मैंने कहा ओहो रक्षाबंधन, तो यूपी में पहले छुट्टी नहीं होती थी, अब शुरू हुई है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, तो बोले हम राखी लाए हैं आपके बांधने के लिए। डॉक्टर मेधा इट वॉज ए शॉक टू मी, सफेद लिबास पर कौन था मुझको तो अपना भी उनकी याद नहीं। जब उन्होंने बांधी तो मैं बहुत पीछे 30 साल 40 साल पुराने इतिहास में चला गया कि अरे ये तो रक्षा का सूत्र है, जो प्रेमवश एक बहन अपने भाई को बांधती है और ये गारंटी मांगती है कि आप मेरे रक्षक हैं या मेरे परिवार के बड़े। परंपरा के तौर पर मैंने फिर उनको बैठा लिया और कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए, और मैंने अपने पीए को बुला के कहा, मैंने कहा आगे से ये जो अपॉइंटमेंट हो ये 15 मिनट तक किसी को अपॉइंटमेंट मत दीजिए। अजीब तरीके से ये लड़कियां अंदर आ गईं और आके बात करने लगी। खैर शी वॉज देयर टू ओबे माई ऑर्डर, सो शी हैड टेकन द ऑर्डर। उन लड़कियों ने मुझे पहली बार कहा कि हम ब्रह्म कुमार हैं। हमने कहा ठहरो क्या बोला, ब्रह्म कुमारीस, अच्छा तो ये किताब है हम आपके लिए गिफ्ट बतौर लाएं। रक्षाबंधन पर शायद बहनें कुछ मिठाई भी देती हैं, जब बांधती हैं तो खिलाती भी। उन्होंने कहा ये हमारा प्रसाद है, मैंने वो भी खा लिया। और फिर मैंने पूछा कि इस किताब में क्या है, कि साहब इसको पहले आप पढ़ लें, कि आप तो पढ़ते ही हैं। देन आई स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी ऑफ ए बिग बिजनेसमैन लेखराज जी, और उसको पढ़ते 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 करीब 6-7 दिन के बाद मैंने एक अपॉइंटमेंट सीख किया। मैंने कहा वो लड़कियां अपना अता पता दे गई, नंबर दे गई। उन्होंने कहा हाँ साहब दे गई, और उस जमाने में मैं शहर के बीच में रहता था, बंगला मैंने बाद में बनवाया। तो वो मेरे वहां इंटरमीडिएट कॉलेज है, मेरे दो इंटरमीडिएट कॉलेजों से इलाके में, वो वहां से अब नंबर लेके आई थी और आके मिली। अब मैं इतिहास पर नहीं ले रहा हूं आपको, मैंने उन बच्चियों को बुलाया, मैंने कहा कि मालूम है ये इन्होंने क्या किया। वो अब मेरी सोशल साइंस आ गई ना बीच में। मैंने कहा ही इज द मैन हु फर्स्ट रियलाइज्ड इवन बिफोर द ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड थिंकिंग ओवर इट दैट आफ्टर ए पर्टिकुलर सिचुएशन विच अराइजेज इन द सोसाइटी, एक समाज में ऐसी एक अवस्था आती है जब बेटी और बहन अपने को बहुत दुरा स्थिति में पाती है, तब हमको क्या करना चाहिए। तो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर्स नहीं मिली, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल सिस्टर्स मिल गई, और वो आज की तारीख तक वो मेरे को रक्षा सूत्र बांधने के लिए आती हैं और मैं उनके सेंटर पर जाता हूं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं जब भी उन इंटरमीडिएट कॉलेजों की मैनेजमेंट की मीटिंग में जाता हूं, तो हमारे यहां बहुत रिवाज है सारी नेताओं के यहां कि खाने को पहले देते हैं, बात बाद में करते हैं। तो मैं बात करने के बाद तो उनको फोन कर देता हूं एक दिन पहले कि मैं आ रहा हूं, और 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को ला रहा हूं जो उस कॉलेज के मैनेजमेंट के टॉप पे हूं, और खाना तुम्हारे साथ ही खाएंगे, और हमको 15 मिनट मुरली सुना देना, क्योंकि वी आर डीलिंग विद वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इन इंटरमीडिएट कॉलेजेस, और खासकर लड़कियों का स्कूल तो बहुत ही परेशान करता है। तो मैं वहां 5 मेरे साथ मेंबर जाते हैं जो डिफरेंट पोजीशंस पर रहे हैं, और वो मुरली सुनते हैं, बड़ा ताज्जुब करते हैं। एक अंधेरा कमरा, एक लाइट। तो मैं उनसे बस केवल एक ही बात कहता हूं, आप ऐसा कर लीजिए, आप अंधेरा कमरा इसमें एक लाइट उस पर फोकस करके बताइए कि ये चलती है या ठहरी हुई है। बोले बड़ा सिली क्वेश्चन है कि ये लाइट चलती है या ठहरी हुई है। अगर ये सब लाइटें बंद कर दी जाए और आप में से कोई भी आदमी जब ये कह दे कि लाइट ठहरी हुई है तो मैं मान लूंगा कि उसने राजयोग सीख लिया। ये सीधा सीधा साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। साइकोलॉजी में इसको जला के एक्सपेरिमेंट रूम में इमेज बनवाई जाती है कि हाउ दिस लाइट इज ट्रेवलिंग। आप एक इमेज ड्रॉ करें, वो आपका हृदय बताती है, आपकी मनोवृत्तियां जिसे हम लोग बाद में कहते हैं एटीट्यूड्स बन गए, वो उसकी व्याख्या कर देती है। तो मनोविज्ञान कब सामाजिक विज्ञानों के साथ शामिल हो गया, ये उस दिन उन बच्चियों ने मुझको समझाया और आज की तारीख तक मैं 2023 में आ गया और मैं तब शायद 55-56 का था, मैं 75 का हूं। तब से अब तक वो रिश्ता एक नहीं, आगरा में 8 सेंटर हैं, 8 सेंटर की बहनें आती हैं या मैं जाता।
डॉक्टर साहब आपकी बायोलॉजिकल सिस्टर्स कितनी हैं वो तो पता नहीं
जी?
आपकी बायोलॉजिकल सिस्टर्स कितनी हैं वो तो पता नहीं,
6 हैं।
लेकिन स्पिरिचुअल सिस्टर्स कितनी है गिना कभी?
अब मैं गिन नहीं सकता क्योंकि जब मैं माउंट आबू आया था
क्योंकि आगरा में तो आपको 2-4 मिली होंगी, इधर आने के बाद
मैं आगरा में कम से कम 150 मिली।
150 मिली
कमला नगर में
जी,
बहुत बड़ी ब्रांच ताजमहल के पास, बहुत बड़ी ब्रांच पीपल मंडी में, बहुत ब्रांच शाहगंज में, बहुत ब्रांच। और हर ब्रांच पे मैं जब उस इलाके में जाता हूं तो उस ब्रांच पर रुकता जरूर 5 मिनट के लिए।
बहुत सुंदर अनुभव डॉक्टर साहब का, जी तो कह रहा है कि सुनते ही रहे।
लेकिन मैं एक मिनट में बात खत्म करता हूं। लेकिन जब मैं माउंट आबू आया 2000 पारे की बात, तो मैं दंग रह गया। इस बात का मुझको बहुत ताज्जुब हुआ कि क्या इतने साधारण रिश्ते से इतना बड़ा संगठन खड़ा किया जा सकता है जिसमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाता है, अपने आप मिल जाता है और ये सेंटर खड़ा हो जाता
जी।
यहां हॉस्पिटल जब मैं देखने गया
जी
आपका, तब वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं था और मेहता जी शायद वहां थे उस वक्त, मैं जब उसको देखने गया तो मैंने पहली बार देखा कि आगरे के हॉस्पिटलों में तो मैं बहुत देखता रहा, दिल्ली में भी देखता रहा कि एक अलग से सेंटर है। डॉक्टर साहब मुझको क्षमा करेंगे, मैं ओपन हार्ट सर्जरी करा चुका हूं, उसके बाद डॉक्टर ने मेरी वाइफ को बताया कि मैंने तो कर दिया है, अब बाकी तो ईश्वर के हाथ में है। अरे जब ईश्वर के ही हाथ में था तो पहले ही बता देते
जी जी, बहुत बहुत थैंक्स,
धन्यवाद।
आप सबके अनुभव इतने अच्छे हैं, आपका ज्ञान इतना अच्छा उन्नत है कि सुनते रहने को मन करता है, लेकिन समय की मर्यादा है इसलिए हम इस सत्र को यहाँ ही समाप्त करना चाहेंगे। जैसा कि मैंने बताया किया कि खूबसूरती यहाँ का मेडिटेशन है, तो लास्ट में हम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन भी करेंगे। आदरणीय दुर्गेश दीदी जी हमारे बीच है जो हमें बहुत सुंदर एक रूहानी यात्रा पर लेकर के चलेंगी।
ओम शांति। अभी हम सभी ये जो 3 दिन की यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते आज यहां पहुंचे हैं और आज ऐसे अनुभव सुने भाइयों से, तो कैसे महसूस होता है, हम कौन हैं, हम कहां बैठे हैं? आर वी ऑल स्टूडेंट्स, एक यूथफुल स्पिरिट अपने में आ रही है और इन दिनों में हम अपनी पहचान ही एक अलग सा पा गए, है ना? याद आता है हम सब जब छोटे थे पहली इंग्लिश राइम हम सब क्या सीखे थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो अभी वो लिटिल स्टार जो मैं हूं इसकी पहचान मिल गई, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूं कि आप गहरी सांस लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाइए। आकाश में अनेक सितारों को हम देखे हैं, कई सितारे बहुत जगमगाता है, कई सितारे बिल्कुल मुंझी हुई है। उन सितारों में से आप सोच लीजिए, मैं एक सितारा हूं, मैं जगमगाता सितारा, बेहद की आकाश से अवतरण होकर इस पृथ्वी में आकर इस धरती पर मेरे शरीर के कपाल के पीछे जैसे भाइयों ने बताया कि दोनों कानों के बीच मस्तक में मैं जगमगाती हूं, अपनी उस सितारा स्वरूप को देखे हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मैं एक चैतन्य सितारा हूं, मैं स्वच्छ हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं। मेरी पवित्रता से मुझ सितारा में उज्ज्वलता भर रही है। महसूस करें, स्वयं को बताए, मैं शुद्ध हूं, स्वच्छ हूं, ट्रांसपेरेंट हूं, बिल्कुल शुद्ध जगमगाती सितारा हूं। मुझसे पवित्रता की वाइब्रेशन, स्वच्छता की प्रकंपन, शांति की किरणें मेरी मस्तिष्क की हर सेल को टच कर रही है। धीरे धीरे मेरे सारा शरीर में, हर इंद्रियों में पवित्रता की प्रकंपन, पर मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं चैतन्य सितारा हूं। मुझे राह बताने के लिए मुझ में शक्ति भरने के लिए मुझे भरपूर करने के लिए और एक सितारा परम ज्योति परमात्मा मेरे सम्मुख आ पहुंचे हैं। महसूस करें, आंखें खुला रखते हुए भी सम्मुख एक चैतन्य सितारा परम ज्योति परम आत्मा जो अपनी हर शक्तियों के साथ मेरे सम्मुख है। ओ मेरे बाबा है, जिनके लिए मैं गायन कर रही थी, तमेव माता च पिता तमेव, वही माँ वही बाबा वही सर्वोच्च शिक्षक एक संपूर्ण जगमगाती सितारे स्वरूप में मेरे सम्मुख है। दिल से कहे मैं आपका हूं, आप मेरे हो, मैं आपका हूं, मेरी मन मेरी बुद्धि आपको समर्पित है। महसूस करें उस चैतन्य सितारा परम ज्योति से, ज्योति के किरणें हमारे मन को सशक्त कर रही है। ज्ञान सूर्य माफिक परमात्मा जिनकी किरणों से, दिव्य ज्ञान के किरणों से मेरी बुद्धि को सशक्त कर रहे हैं, मेरे मन और बुद्धि आपको समर्पित है। महसूस करें कि मेरे मन और बुद्धि सशक्त होने के साथ एक दिव्य जगमगाहट मेरे स्वरूप में, मेरे मन शांत है, स्थिर है, मेरी बुद्धि दिव्यता से भरपूर हो रही है, मेरे संस्कार श्रेष्ठ बनती जा रही है। स्वयं परम शिक्षक मार्गदर्शन देकर मेरी इंद्रियों में दिव्यता भर देते हैं। दिल से शुक्रिया कहे, ओ मुसाफिर कहां से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं एक चैतन्य जगमगाता महत्वपूर्ण सितारा बनकर मेरे मन और बुद्धि की प्रकंपन से वातावरण में, समाज में शांति प्रेम शुद्धता क्यों फैला रही हूं। मैं स्वतंत्र हूं, परमात्मा की आशीर्वाद को महसूस करते हुए मैं सितारा सदा जगमगाते रहूं। गहरी सांस लेते हुए वातावरण में जो परमात्मा की देन है, ये लाइट माइट जिनमें शुद्धता शांति शक्ति भरी हुई है उसको अर्पण करते हैं। ऐसे ही लाइटनेस के साथ, दिव्यता की महसूसता के साथ इस यात्रा में आगे बढ़े। ओम शांति।